আর ওর মধ্যে কিছু ঐশ্বর্য অংশ লিপ্ত থাকবে, প্রখণ্ড রুক্মিণী ভাব। গোপীগণের মধ্যে বাম্য ভাব প্রধান, দাক্ষিণ্য ভাবের কিছু একটা থাকবে না, আর তার মধ্যে ঐশ্বর্যের লেশও থাকবে না। রুক্মিণী ওখানে যে চন্দ্রাবলী প্রভৃতির মধ্যে যে দেখা যাচ্ছে তদীয় ভাব, তার মধ্যে ঐশ্বর্য নাই, কিন্তু রুক্মিণী ইত্যাদি মে মধ্যে আছে ঐশ্বর্য ভাব, এই জন্য ওদের সঙ্গে বহু পার্থক্য। এখন চৈতন্য মহাপ্রভুতে যখন কৃষ্ণ এসেছেন তখন রাধিকার যে ওই ভাব মহাভাব মদন ভাব ইত্যাদি চুরি করে নিয়েছেন। আমার যদি কোনো হীরা মুক্তা থাকে আর তুমি চুরি করে লো, তাহলে মুক্তা থাকবে কি আমার কাছে? মুক্তা তো তুমি চুরি করে নিয়েছ। ওই রকম কৃষ্ণ চুরি করে নিয়েছেন কি? ওই বাম্য ভাব যুক্ত যে কুটিল প্রেমের যে ভাব, ওই ভাবটা চুরি করে নিয়েছে। এই জন্য বাকি থাকলো কি? ওই ঐশ্বর্য অংশে সে মিশ্রিত ওই দাক্ষিণ্য ভাব, যা রুক্মিণী সে থাকে। এই জন্য মহাপ্রভু তাকে কোনো কোনো সময়তে বলছেন যে পরীক্ষা করেছেন, কোন সময়তে মহাপ্রভু বলেন যে শপথ দিচ্ছি তোমাকে, মাথার আমার আমার মাথা খাও যদি তুমি যাও এখান থেকে, কটক থেকে আগে তুমি এখানে থাকো, তুমি এইখানে থেকে গোপীনাথের সেবা করো আর ক্ষেত্র সন্ন্যাস রক্ষা করো, যদি আমার কথা প্রতিবাদ করে তা আমার মাথা খাও, আসল মাথার শপথ আমার মস্তকের শপথ, তুমি যাও। ওই শুনেই বা মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। সার্বম ভট্টাচার্যকে বললেন যে তুমি একে রামানন্দ আগে পর্যন্ত এসেছি আরো পরেও, কিন্তু সার্বম ভট্টাচার্য তিনি তো একটু ঐশ্বর্য ভাবযুক্ত, এই জন্য তাহার ধৈর্য ছিল, ইনাকে নানা প্রকারে বুঝিয়ে টুঝিয়ে ইনি দুঃখিত হলে তাকে বুঝাইলেন সান্ত্বনা দিবে। সান্ত্বনা দিবে কে? যাহার তত দুঃখ নাই সে সান্ত্বনা দিবে, যাহার একটু ধৈর্য আছে সে। এই জন্য তিনি তাকে ধৈর্য ইত্যাদি দিয়ে কোন রকম ভাবেতে নিয়ে আস। এইখানে যে মহাপ্রভুর আদেশ পালন করলেন আর মহাপ্রভু যা যা বলেছেন, মহাপ্রভু যে তোমাকে অনেক চালাইতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু তুমি চললে না, অর্থাৎ তুমি আমার কথা উল্লঙ্ঘন করলে না, এই জন্য আমি তোমাকে স্নেহ করছি, এই জন্য তিনি চলে গেলেন। এই হচ্ছে দাক্ষিণ্য ভাব। যদি কৃষ্ণের কোনো কথা গোপীগণের ভালো না লাগে তথাপি কৃষ্ণ যদি আদেশ করেন কাঁদবে তাহার নিকটেতে, শ্রীমতী রাধিকার মতন বলবে না যে তুমি এখানে কুঞ্জ ছেড়ে দিয়ে তুমি চলে যাও, আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না। আর কৃষ্ণ হাত জোড়ে ওখানেতে পায়েতে পারবেন, বলি আমার পায়ে ছুঁয়ো, এরকম হয়তো ওরা করতে পারবে। এই ইনার ভাব ছিল রুক্মিণী দেবীর মতন গদাধর পণ্ডিত, কারণ ওই তো ভাবটা চুরি করে নিয়েছেন, কৃষ্ণ আর মহাপ্রভু হয়েছেন সেই ভাবটা আস্বাদন করছেন। এই জন্য গদাধর পণ্ডিত ওইখানেতে তিনি ছিলেন, তিনি কোন সময়তে মহাপ্রভু ওখানে প্রায় যেতেন এবং তাহার নিকটেতে ভাগবত শুনতেন। কেন ভাগবত কেন শুনতেন? অহম বেদমি শুকো বেদি ব্যাস বেদি নবেদি, এটা কে বলছে? শিব ঠাকুর বলছে। কৃষ্ণের জন্য বলেন যে সে বেদি বা নবেদি, ব্যাস হচ্ছেন নারায়ণ, এই জন্য কৃষ্ণ জানেন কি না জানেন এটা হতে পারে, এই জন্য জানতেন না বলেই আস্বাদন করছেন রাধায় আপ্রণয় মহিমা, গেলেন গোদাবরীতে রায় রামানন্দের নিকটে শুনলে তারপরে কিছু আস্বাদন করবার চেষ্টা করে, এ পূর্বে নয়। এই জন্য বলছেন যে মহাপ্রভু ওই ভাগবত শ্রবণ করবার জন্য, ভাগবত মানে গোপীগণের চরিত্রই হচ্ছে ভাগবত, এই জন্য কৃষ্ণের ওখানে কোথাও বন্দনা দেখা যায় না, বন্দে নন্দ ব্রজ ইস্তিনাং পাদরিং আকামহ চরণ রেণি জুষামহম শ্যাম, যেখানে স্বরূপ দামোদর থাকতেন এবং পরবর্তী কালে রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাহার নিকটে থাকতেন, এই যে বাড়ি হলুদ রকমের বাড়ি, এখন বাড়ি হয়ে গেছে,
ঘর বাড়ি হয়ে গেছে
আর কিছু নাই,
তবে এইখানে ওটা ছিল, ওটা ভাঙা চূড়া হয়ে গেছে, তারপরে এরা আবার করে দিয়েছে, এখন কিছু নাই।
ছোট হলুদ
এইটা সামনে
এই ছোট করতে পারি তদভিন্ন তাঁরই গুরুভ্রাতা শ্রী ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সেবা সুস্থভাবে বজায় রাখতে পারি, তার জন্য তিনি নিষ্কপটে আমাদের প্রতি আশীর্বাদ করেছেন, আমাদের এই সোসাইটি তিনি প্রেম করে দিয়েছেন, আমাদের সেই সোসাইটির নিয়মকানুন তিনি সেগুলি প্রকাশ করেছেন, আমাদের উপদেশ দিয়ে কীভাবে এই সোসাইটিকে রক্ষা করা হয় সেসবগুলি তিনি রেজিস্টারি করে আমাদের বহু প্রকার তাঁর অভিন্ন সুরের প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী সেবা নিযুক্ত করে তিনি আমাদের প্রতিচিরক পূজ্য এবং আমাদের পরম সুরের রূপে বিবেচিত করে তিনি কৃপা করুন, তিনি যেখানেই থাকুন আমরা যদি না দেখতে পাই তিনি আমাদের প্রতি আশীর্বাদ করছেন, এই জন্যই তাঁর এই সুপাত পদ্মে আমরা এসে তাঁর আশীর্বাদ দিই। বাঞ্চা
নমো মহাবুদ্ধায় কৃষ্ণপ্রিয়ায় কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরবস্তুতে। পূজ্যপাদ শ্রী বিক্রমা রাজি নে বাংলা মে বাংলা ভাষা মে কুছ বতলাযা, মে হিন্দি ভাষা মে থোড়া সা আপ লোগো কে লিয়ে বতলা দেগা, জো উন্হোনে কহা উসি কা উচ্চ শিখর বন। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये वो हमारे गुरु महाराज जी के परम प्रिय भक्ति सिद्धांत सरस्वती जगत गुरु जो जगत में आए थे महाप्रभु जी के आचरित और प्राचारित प्रेम प्रचार करने के लिए विश्व में, उनके परिकरों में ये दो यहाँ पर आने वाले परम पूज्यपाद भक्ति विवेक भारती महाराज जी और नित्य लीला प्रभुत्म विष्णुपाद कृष्ण भक्ति शांति महाराज जी, उन्हीं लोगों के द्वारा यह मत प्रकाशित हुआ है। आप लोग देख रहे हैं कि कितना सुंदर दिव्य मंदिर है, मैं समझता हूँ कि पूरी में क्या और कहीं भी इतना सुंदर मंदिर होना बहुत कठिन है, दुर्लभ। सामने देख रहे हैं कृष्ण जा रहे हैं आप फूल लेकर के, और गोपियां सत्याग्रह वहां पर कर रही हैं, कहीं महाभारत का चित्र है, कहां समस्त श्रीमद् भागवत से कृष्ण के जन्म लीला से लेकर के और सब चित्र हैं, माने भागवत यहां पर एकदम संपूर्ण रूप से प्रकटित हुआ है। भागवत वहां ग्रंथ में पढ़ेंगे, यहां पर चित्र में पढ़ेंगे, इतना सुंदर उन्होंने किया। यहीं पर नहीं, कलकत्ता मठ में भी और नवदीप के मठ में भी उन्होंने ऐसे ही सब प्रकाशित किए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने जाने के बाद में एक रुपया हम छोड़ करके नहीं जाएंगे, हम सब ठाकुर जी के विग्रह में और भागवत के रूप में ये सबको लगा देंगे, और ऐसा ही उन्होंने किया। आप लोगों ने सुना होगा, हमने एक दिन बतलाया था कि ये अपने घर छोड़ करके प्रभुपाद के चरणों में आए। गुरु महाराज जी से उम्र में छोटे थे, और एक ही बांग्लादेश के एक ही शायद जिले के रहने वाले थे। जब मठ में आए तो देखा इन्होंने, अरे सभी बड़े बड़े विद्वान आदमी हैं, कोई भी कम पढ़ा लिखा हुआ नहीं है। तब उनके हृदय में भावना है कि हम घर में जाकर के और फिर से पढ़ करके आएंगे, इसलिए किसी से नहीं कह करके घर में चले गए थी और वहाँ पर वकालत पढ़ने लगे। मुख्तारी उस समय था, पढ़ने लगे। गुरु महाराज जी हमारे फिर उनके घर में गए और उनको हरी कथा सुना कर करके और फिर से उन्होंने मठ में लाया। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी। शिक्षा गुरु के रूप में मानते थे, जैसे हम लोग इस महापुरुष को शिक्षा गुरु के रूप में मानते हैं, जैसे पूज्य पाद महाराज जी ने कहा। हम लोगों के समस्त समिति को गुरु महाराज जी के अप्रकट होने के बाद में उन्होंने नियम कानून के द्वारा हम लोगों को बांध दिया, कौन प्रेसिडेंट रहेगा, कौन सेक्रेटरी, कौन वाइस प्रेसिडेंट इत्यादि इधर उधर से कर करके सब हम लोगों को बांध करके सेवा में नियुक्त कर दिया। उन्हीं की कृपा से आज तक हम लोग निर्विवाद रूप में अपने गुरु पाद पद्म की और अपनी गुरु परंपरा और भगवान की अभी तक सेवा और प्रचार कर रहे हैं। ये महापुरुष के प्रति हम लोग सब समय ऋणी रहेंगे। तो ये जब आ गए तो एक दिन कलकत्ते मठ में उल्टा डिंगी में मठ था, तो वहां से ये दोनों आदमी आए कलकत्ते में हावड़ा स्टेशन पर और वहां पर दोनों बोरियों में एक छोटी सी बोरी माने वो भी एक मन डेढ़ मन उसमें सब्जी भरी हुई और दूसरी भी करीब करीब डेढ़ मन की सब्जी भरी हुई थी। दोनों दौड़े छोटे की तरफ में नहीं बड़े की तरफ में। पूज्य पाद ये सिद्धांति महाराज जी उस समय उनका नाम सिद्धस्वरूप ब्रह्मचारी था। पूज्य सिद्धस्वरूप महाराज प्रभु जी आगे दौड़ करके बड़े को पकड़ा और गुरु महाराज जी दौड़ करके ये तो बालक से जल्दी से दौड़ करके बड़े को पकड़ लिया। गुरु महाराज जी जाकर के फिर बड़े को पकड़ लिया और किना झपकी होने जब मैं इसको लूंगा तो मैं लूंगा। वहां से उल्टा डिंगी कभी कभी 2.5-3 मील दूर पैदल वहां पर जाना है सिर पर बोझा लेकर के और दोनों परस्पर खिंचातानी करें, हम लेंगे बड़े वाले को तो हम लेंगे भारी वाले। ऐसे गुरु बच्चों की सेवा होती है, हम लोग उल्टा करते हैं इसके। यही सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी जी गुरु महाराज जी का मिशन प्रभुपाद जी का मिशन लेकर के पूज्य पाद नेमी महाराज जी के साथ में बारिशाल जिला में गए वहां पर प्रचार करने के लिए। वहां पर प्रचार होकर के प्रचार करने के समय में पूज्य पाद नेमी महाराज जी ने इनको कहा सिद्ध स्वरूप कुशहरी कथा बोलो, कुशहरी कथा कहो। तो उठ करके उन्होंने आरंभ किया और उसने राम छागल का बड़े जोरों से खंडन किया। राम छागल हरि कथा का जगत का क्या उपकार करेगा, गीतांजलि का मानी गीता का एक श्लोक ले करके और नकल करके उसको अंग्रेजी में लिख दिया तो उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। हम लोगों के यहाँ उनकी पुस्तकें और रसोई घर में स्त्रियां लेकर के पढ़े विवेकमान पुरुष ये सब उनकी बातों को लेकर के नहीं चलते। इसलिए जब उनको राम छागल कहा बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी राम छागल कहा जैसे छागल कुछ भी जो कुछ भी होता है खा लेता है और मुख चलाता है और ऐसे ऐसे करता है, ऐसे जगत के जितने घास रूपी अवर्जना उसको चिबाने वाले खाने वाले होगी लोग वो लोग हरी कथा क्या जानेंगे और जगत का उनसे कोई भी उपकार नहीं होगा। जब इतना था तो सभा के सब लोग एकदम स्तंभित हो गए और एकदम विरोधी हो गए और कहा हम आप लोगों की बात हम नहीं सुनना चाहते, उनके विरोधी हो गए। नेमी महाराज जी को भय लग गया, उन्होंने कहा आज सिद्ध स्वरूप हमारा प्रचार सब गड़बड़ कर दिया, प्रभुपाद को टेलीग्राम कर दिया मायापुर में कि हमारे आज प्रचार को बने बनाने सभी लोगों को बड़ा सुंदर प्रचार चल रहा था, सिद्ध स्वरूप ने आकर के क्या गड़बड़ कर दिया, आराम ठाकुर कह दिया उनको ठाकुर बस सब लोग बिगड़ गए, अब हमारी बात कोई नहीं सुनता है, टेलीग्राम किया प्रभुपाद जी अब हम क्या करें। प्रभुपाद जी ने वहां टेलीग्राम किया आज सिद्ध स्वरूप हमारा लाख कोटि रुपए का प्रचार किया, बिना ऐसा कहे हुए प्रचार नहीं होता है। आज मैंने सुना कि आज सबसे अच्छा प्रचार सिद्ध स्वरूप ने ये किया जो सब लोगों को विचार करने के लिए विवश किया, कुछ सुना तो लोगों ने और विरोध तो किया, हमारा यही लाख रुपए का प्रचार हुआ। अभी मैं आता हूँ और देखता हूँ और देखकर मैं सबको सिखाऊंगा। बस प्रभुपाद आकर के उस सभा में ऐलान किया जिसको विचार करना है वो आओ, कोई भी सामने नहीं आया। इस तरह से गोविंदमठ का प्रचार हुआ, ऐसे नहीं प्रचार हुआ। आज हम लोग छोटी छोटी बातों के लिए परस्पर लड़ते हैं झगड़ते हैं, इन सबको बंद करके हम सब लोगों को भगवान का प्रचार जैसे इस महापुरुष ने किया, भक्ति रूप सिद्धांति महाराज जी ने किया, ऐसे ही हम लोगों को भी प्रचार करना चाहिए। निर्भीक नहीं होने से, शांति नहीं होने से यह प्रचार नहीं होता। इसलिए इन लोगों ने उस धारा किसी के साथ में आपस मीमांसा नहीं किया, सहजिया को गले नहीं लगाया, मायावादी को गले से नहीं लगाया। आज तो सभी बराबर हो गया, गंगा भी पट गई और उसमें हम लोग दोनों मिल रहे हैं इस पार उस पार, ऐसा नहीं। ये लोग ऐसे निर्भीक सत्य के प्रचारक थे। इन्होंने केवल ऐसा ही नहीं, केवल भाषण देना, इन्होंने भक्ति विवेक, भक्ति विवेक भक्ति महाराज जी गीता का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का अनुभाष्य का अनुभाष्य किया। बहुत ही सुंदर हमारे संप्रदाय में वो आदर्श, और इन्होंने उसको फिर से प्रकाशित करके बलदेव विद्याभूषण के काशी का उन्होंने तीन खंडों में उन्होंने प्रकाशित किया। यही नहीं, हमारे गुरु जी की बहुत इच्छा थी, प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वेदांत का एक संस्करण हमारे गौड़ीय वैष्णव का होना चाहिए। बलदेव विद्याभूषण ने तो वेदांत का भाष्य लिखा, किंतु उसको भी सरल सहज बोधगम्य भाषा में कर करके सब लोगों के लिए उसको सुलभ किया जाए, गुरु महाराज जी की बड़ी इच्छा थी। विशेषकर तो उनकी इच्छा थी जो वेदांत का अकृत्रिम भाष्य भागवत है, इसलिए वेदांत के सूत्रों से भागवत का मेल खाता है। इसलिए वेदांत सूत्र की व्याख्या करते समय श्रीमद् भागवत के अनुकूल जो श्लोक है उसको लेकर के वहां पर रखा गया। इस महापुरुष गुरु महाराज जी तो नहीं कर सके, चले गए साधी में, तब इन महापुरुष ने बड़े परिश्रम के साथ में श्रीमद् भागवत का प्रत्येक श्लोक जो उस वेदांत के सूत्र से मेल खाता है उसको उसमें देकर के उसकी व्याख्या टीका देकर के अनुपम ग्रंथ राजी वेदांत का उन्होंने भाष्य लिखा। इसके अतिरिक्त उन्होंने भक्ति रसामी सिंधु बिंदु उज्ज्वल मणि किरण और भगवतामृत खना जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का यह ग्रंथ है, इन ग्रंथों के माध्यम से ही हम लोग रूप गोस्वामी के और सनातन गोस्वामी के कृष्णदास कविदास के ग्रंथों में हम लोग प्रवेश पा सकते हैं। ये द्वार है। इन्होंने सब सहज उसकी व्याख्या करके सीधा करके इस ग्रंथ को इन्होंने प्रकाशित किया है। इनके ग्रंथों को पढ़ करके हमको लोभ हुआ कि हिंदी भाषा में इसका भी प्रचार होना चाहिए। इसलिए मैं इन लोगों से, हमारे वो जो सामने खड़े हैं, इनसे हमने प्रार्थना की, उनका नाम क्या है, मुनि महाराज जी को, इसके बाद मुनि महाराज जी को हमने प्रार्थना की, भाई हमको एक कहीं से ये तीन ग्रंथों को हमको दे दीजिए। उन्होंने कृपा करके उन ग्रंथों को हमने दिया। मैं यहाँ पर था उसी समय में हमने लिखा अपनी कुछ, उसमें और भी कुछ लिखा लेकर के वो हिंदी भाषा में इसको प्रकाशित किया गया। साथ साथ में राजबक्षण चंद्रिका भी हमने उसमें प्रकाशित करके चार ग्रंथ हमने प्रकाशित किया है। मुझे आज भूल हो गई, मैं आज उनके कर कमलों में इन चारों ग्रंथों को देना चाहता था। मैं कल या आज वहां से लौट करके नवीन जी आप लेकर के इन लोगों को दे देंगे। ये पूज्य पाद महाराज जी के कर कमलों में इस ग्रंथ को देंगे, जो अपने प्रियतम जो राधा गोविंद जी हैं उनकी सभा में और चैतन्य महाप्रभु जी की सभा में उपस्थित करें और हम लोग को प्रचुर आशीर्वाद करें, जो हम लोग उनके पथ पर चल करके जितना जगत का मालिन्य मनोभाव यही सब दुर्वासना है वो छोड़ करके सरल सहज रूप में चैतन्य महाप्रभु की धारा को हम लोग संरक्षण कर सकें और उसमें प्रतिष्ठित होकर के स्वयं भजन भी कर सकें, दूसरों को भी भजन करा सकें। नहीं तो लोग जगत में देख करके हंसते हैं हम लोग, जब प्रदीप के नीचे ही अंधकार हो जाता है तो क्या होगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि ये महापुरुष जी हम लोगों पर कृपा करें, हम लोग उनकी धारा में प्रतिष्ठित होकर के गुरु वैष्णव की सेवा कर सकें जैसे उन्होंने सेवा की है, उन्हीं की कृपा से हम लोग इसको पा सकते हैं। इसलिए आज हम लोग सबसे पहले अपने शिक्षा गुरु श्रीमद भक्ति रूप गोस्वामी सिद्धांति महाराज जी के चरणों में हम लोग प्रथम आए हैं, वे हम लोगों को भूरी भूरी कृपा करें। यही प्रार्थना करके हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं और इसके बाद में हम लोग सिद्ध बकुल में जाएंगे। आप लोग धीरे धीरे वहाँ पर बहुत
पावन नित्यानंद प्रभु की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय। नीलाचल धाम की जय। नवेद भक्तवृंद की जय। अब तक हम लोगों ने सूर्य पाठ सुदेख महाराज जी के मुख से हरिदास ठाकुर के संबंध में, नाम तत्व के संबंध में बहुत कुछ श्रवण किया। समय भी हो गया है, जल्दी चलना है, नहीं तो 9:30 बज गया है। अभी से यहाँ हम लोग साधु भट्टाचार्य जी, गंगा माता, मठ मंदिर और जगन्नाथ जी में जा रहे हैं। महाराज जी ने जो कहा, बस हम दो एक बातें कहते हैं। यहाँ पर अभी देखते हैं कि ये बकुल पेड़ है। चैतन्य महाप्रभु जी एक दिन जगन्नाथ मंदिर में गए, तो वहाँ का नियम है, पहले जो आरती सप्तमी में भोर में जो होती है, उसमें ठाकुर जी को दातुन इत्यादि दिया जाता है। और वह दातुन जब ठाकुर जी का जो हो जाता है, तो कोई महापुरुष, बड़े आदमी, प्रतिष्ठित व्यक्ति, राजा या मठ के कोई बड़े बड़े लोग होते हैं, साधु संत, तो उनको दिया जाता है, विशेष व्यक्ति को। तो उस दिन चैतन्य महाप्रभु जी वहाँ पर पहुंचे, आरती दर्शन करके पुजारी ने उनको वह दातुन दे दिया। चैतन्य महाप्रभु लेकर के हरिदास ठाकुर जी के यहाँ पर, हरिदास ठाकुर जी वहाँ पर नाम भजन कर रहे थे, उन्होंने आकर के उस दातुन को मट्टी में वहाँ पर गाड़ दिया। गाड़ने के साथ ही साथ में उसमें कपोले आने लगे, पत्ते आने लगे, और देखते देखते विराट महिद रूप का रूप धारण कर गया। हजारों डाले और पत्तों से एकदम भर गया और छाया भी बहुत हो गई। महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए, हरिदास ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, उसी के नीचे बैठ करके वो हरिनाम करते। कुछ दिनों के बाद में चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए। पहले तो हरिदास ठाकुर जी का निर्ज्ञान हुआ, आपके संबंध में उन्होंने बतलाया, इसके बाद महाप्रभु जी अप्रकट हो गए। कुछ दिनों के बाद में पुजारी नियमित रूप से इसकी पूजा करता था और एक दिन राजा का बहुत से लोग कर्मचारी आए, रथ यात्रा निकलने वाली है और उसका ठाकुर जी का रथ का चक्का बनेगा, पहिया, उसके लिए देखा कि ये पेड़ बहुत सीधा, बहुत मोटा और बहुत ऊंचा, बहुत ही सुंदर पेड़ है। राज्य भर में खोज करके ऐसा सुंदर वृक्ष नहीं मिला। देख करके उन लोगों ने कहा कि इसको हम लोग काटेंगे, और काट करके ठाकुर जी के रथ यात्रा के लिए पहिए बने। उसमें एक ही साथ में बहुत पहिया हो जाता। वहां के उस समय जो पुजारी थे, उससे बहुत प्रार्थना किया हाथ जोड़ करके, यह सिद्ध बकुल है, हरिदास ठाकुर की स्मृति है, महाप्रभु जी की स्मृति है, तुम छेड़छाड़ मत करो, इस वृक्ष को रहने दो, दूसरा वृक्ष तुम लोग, इसके बदले तुमको हम रुपया देते हैं, तुम कहीं से भी दे करके खोज करके और वैसा बनाओ। किंतु वो माना नहीं। तब वो भूख हड़ताल किया, खाना पीना छोड़ दिया, रोने लगे, किंतु कभी नहीं सुना। तब ये कल हम वृक्ष आकर के सदैव ही कहते हैं। जब किसी प्रकार से नहीं माना, चला गया और काबिया जी से फिर सदैव वो आया और ये बिना खाए पिए और वहीं पर हरि नाम करते रहे। सवेरा जब आए वो लोग साथ वो काटने के लिए और कुल्हाड़ी और सब लेकर, जब आया तो देखा क्या, पेड़ में नीचे कुछ सार है नहीं और वो जमीन पर लुढ़क गया है, लोट पोट गया है, और वो जो ऊंचा तक उसका मोटा लंबा जो था वो कुछ है ही नहीं।
केवल ऊपर का छाल है जैसा अभी देख रहे हैं, इसी रूप में 500 वर्ष पहले की बात, और ऐसा ही वो गिरा पड़ा। उसमें क्या अब कुछ हो नहीं सकता है, बढ़िया और सकता देख करके कब कैसे हो गया देख करके उनको आश्चर्य सचित वो हो गए, और फिर उस पेड़ की परिक्रमा करके और विष्णु को स्वरूप में इसकी प्रतिष्ठा हुई। और सबसे सब समय हरा भरा रहता है, एखनो हरा भरा। এটা হরিদাস ঠাকুর চৈতন্য মহাপ্রভুর এটা হচ্ছে স্মৃতি। এইখানেতে এই বৃক্ষের ছায়াতে হরিদাস ঠাকুর 3 লক্ষ হরিনাম প্রতিদিন করতেন, অপতিত ভাবে কিছু নাম উচ্চারণ করতেন আর কিছু নাম মনে মনে করতেন। শিলরূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী নিজেকে তিনি বললেন ব্রাহ্মণকুলেতে জন্ম নিয়ে নিজেকে তৃণাগতনি যেমন মনে করতেন, আর এরাও যেরকম হরিদাস ঠাকুর যেতেন না ওখানেতে মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করতে, এরাও যেতেন ওভি নেই যাতে থে আর ওই পর রহ করকে ভজন করতে থে, আর মহাপ্রভু উনকো দর্শন দেনে কে লিয়ে ইহাঁ পর প্রতিদিন আতে থে, উনকি প্রসাদ কি ব্যবস্থা করতে থে। একদিন রথ যাত্রা কে সময় মে এক প্রসিদ্ধ ঘটনা হুই, चैतन्य महाप्रभु जी राधा भाव में विभावित होकर के जगन्नाथ जी को देख रहे हैं। सही तो प्राणनाथ अमी सही प्राणनाथ के तीर की जात जन्म जिनके लिए मेरा हृदय जर्जरित हो गया, दिवस समय जर्जरित हो गया, आज उसी प्राणनाथ को मिलने पाया। कुरुक्षेत्र की बात उनको सुनाई जब गोपियां उनसे मिलने के लिए, उस समय में महाप्रभु जी भाव विभोर होकर के और बार बार स्वरूप दामोदर के द्वारा सही तो प्राणनाथ पाई में ये धुआ गान कराने लगे, और उस समय में एक श्लोक पढ़ रहे हैं, लाखों लोगों की जय जय ध्वनि, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की ध्वनि और हरि बोल की ध्वनि, और कितने मादल
14
प्रधान स्वरूप में से 14 ना जाने कितने होंगे, सिंगा और क्या क्या सब बज रहा है, आकाश हरि बोल ध्वनि से जूझ रही, और उसमें महाप्रभु जी वो श्लोक बड़े प्रेम के साथ में पढ़ करके, और श्लोक क्या
जय
को मान महाराज जी वहां पर जाकर के इसकी व्याख्या विशद रूप में करेंगे, हमको तो अनुशीलन नहीं है, महाराज जी विषय में पटु हैं, भूमिका बांध करके इसकी व्याख्या करेंगे।
देखिए कपटी है
तो महाराज जी के मुख से ही हम लोग इसको सुनेंगे, मैं अच्छी तरह से व्याख्या नहीं कर सकता इसलिए संक्षेप नहीं बतला रहा हूं। महाप्रभु जी ये काव्य प्रकाश का साहित्य दर्पण का यह बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, अलंकारिक ग्रंथ है, उसमें से ये श्लोक पाठ कर मेरा मन रेवा नदी के तट पर जाने के लिए अपने प्रियतम से मिलने के लिए हमारी लालसा जग रही है, वो प्रियतम तो यही है और मैं भी वही हूं, हम दोनों की अब शादी हो गई है, किंतु यहाँ पर माता पिता भाई बंधु ये सब लोग हैं और बड़ा राज्य है, यहाँ पर हमारा मन नहीं लगता इनसे मिलने में, मिलन तो वही है, रात वही चैत महीने की रात है, बसंत ऋतु की रात है, कदम्ब से वही हवा होकर के आ रही है, किंतु हमारा मन, हम लोगों का पूर्व मिलन जबकि शादी नहीं हुई थी प्रथम मिलन था, और उस मिलन में जो हम लोग स्वच्छंद गति से वहां पर मिले, रेवा नदी और देव का देव वन, पास ही में कदम्ब के वृक्ष है, नदी के सुगंधित एम खूब सुशीतल जल और कदम्ब का वहां करके, और चैत्र मास की वह सुंदर अनिल मदद का भक्ति, उसी में हम लोगों का जो प्रथम मिलन हुआ है वैसे ही मिलन के लिए हमारा चित्त उत्कंठित है, कोई नहीं समझ रहा, एक व्यक्ति है जो समझता है वह स्वरूप राम, एक छोटा सा लड़का भी वहां पर खड़ा है, लड़का मैंने महाप्रभु का संत प्रिय रूप, उनको बाजे गाजे और हरि ध्वनि और जगन्नाथ जी के तरफ में उनकी दृष्टि नहीं, उनकी दृष्टि कहाँ है, महाप्रभु जी के मुखारविंद में कैसे कैसे भाव तरंग आ रहे हैं, जैसे समुद्र में लहरी आती है ऐसे उनके मुखारविंद में जो जो भावना करते हैं, भावना दृष्टि से देख करके मिलन में जो जो भावनाएं होती हैं राधा जी के साथ में कृष्ण के मिलन में, वो सब देख करके ये अत्यंत आकर्षित, बस वहीं पर उनके भ्रमर की तरफ में कमल पर जहाँ पर रहता है ऐसे मुखारविंद पर इनकी दृष्टि टिकी हुई है और वही भावों को पढ़ रहे हैं और दूसरा कोई नहीं सुना, बस वही एक सुने सौत दामोदर जी सुन करके भी कुछ बोल रहे। रथ यात्रा के समाप्ति काल के तर्क चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी को दर्शन देने के लिए यहाँ पर पधारे। रूप गोस्वामी समुद्र में स्नान करने गए थे, महाप्रभु जी बातचीत करते हुए ऐसे ऊपर में हाथ ऐसे पकड़ करके खड़े थे जैसे कि हम लोग खड़े हो जाते हैं, इतने में कोई हाथ उनके चीज में लगी, उसको ऐसे कुतूहल से निकाल लिया, दिखा जिस पर कुछ लिखा है कैसे